हेलो हेलो हेलो
ठीक है ना इसको।
जय इंद्र, अभी हम ध्यान गोष्ठी चालू करें उसके पहले कुछ मिनट। हेलो जय जिनेन्द्र, अभी ज्ञान गोष्ठी की शुरुआत करें उसके पहले मुझे कुछ दो तीन थोड़े मिनट चाहिए। आप सबको विदित होगा कि ये मोना का 9वां शिविर यहाँ देवलाली में था और एक शिविर हमने मंगलायतन में पहले किया था, तो ये मिलके आज हमारा 10वां शिविर पूरा होता है अमेरिका में, इंडिया में। जैसे कि हमको भारी जी ने बताया बहुत साल से कि अभी अपनी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, कि भी सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट गोल तो आत्मानुभूति, आत्मा की प्राप्ति, वो अपना फर्स्ट गोल है। जब भी इसके लिए अपना सब सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, लेकिन उसमें जब भी आपको नहीं रह सके, जब भी उसको स्पेशल आपको टाइम मिले, तो जिनवाड़ी का प्रचार प्रसार वो अपना नेक्स्ट गोल होना चाहिए। तो उसके मुताबिक हम लोग ने हमारा नम्र प्रयास किया है कि गुनगुन गान तत्वज्ञान गान प्रचार प्रसार हो गए, तो इसके अनुसार हम लोग अमेरिका में बहुत से टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लासेस चलाते हैं और यहाँ शिविर भी चलाते आए हैं। तो वो हमारा गोल, उसके हिसाब से हमने यहाँ अभी तक में जो शिविर किए वो इतनी, ये सब हमारी थीम थी, ओवरऑल थीम कि पहला शिविर था दृष्टि का विषय और भेद ज्ञान की प्रयोग विधि, दूसरा गुरु चिंतन जिसमें हमने गुरुदेव श्री के नित्य क्रम के 175 बोर्ड के ऊपर पूरा शिविर लिया था, तीसरा था कहान गुरु की रिद्धि और जिनागमों की सिद्धि जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री प्रतिपादित 5 सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, षट कारक, दृष्टि का विषय और ज्ञान का स्वभाव प्रकाशक स्वभाव, ये 5 विषय ऊपर 5 दिन तक, मैंने एक दिन पर एक विषय ऐसा शिविर लगाया था। बाद में समय सरकार कर्ता कर्म अधिकार पर, संवर अधिकार पर, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर और 4 अनियोग से वितरागता की प्राप्ति, उसके ऊपर एक शिविर लगाया था। बाद में समय सार प्रवचन सार के परिशिष्ट ऊपर और ये 9वां शिविर है गुरु महान दृष्टि महान, जो अभी अपने समाप्ति की ओर जा रहा है। ये सब शिविरों में मंच और माइक दोनों हमें मोना को सुप्रत करने के लिए और ट्रस्ट का हम बहुत आभारी है। तो मंच और माइक माने उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया कि हम कौन से विद्वान लाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट रखते हैं, कौन सा टाइमिंग रखते हैं, तो पूरी तरह से हमको स्वतंत्रता दी थी, तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ये शिविर की जो फॉर्मेट थी वो एक प्रकार से जिसको अभय कुमार जी गुरु मंथन शिविर कहते हैं। गुरु मंथन शिविर माने जो अपना सब्जेक्ट और जो अपना उसका प्रतिपादन करते हैं अनेक विद्वानों के द्वारा, तो सब गुरुदेव के प्रवचन को के फोकस में रख के करते हैं। इसलिए या वह समय सार सिद्धि या प्रवचन सुधा उसका सब प्रोजेक्शन स्क्रीन पर लगता है और सब विद्वान उनको फोकस में रख के उनके प्रवचन करते हैं। तो ये एक प्रकार का गुरु मंथन शिविर था। तो अभी इतने बैकग्राउंड के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबको ये ओवरऑल इम्प्रेशन क्या रही है शिविर की, आप सब सेटिस्फाइड हैं, आपको कुछ मिला यहाँ से जाने के लिए कि कुछ नहीं मिला, कि क्या, तो आपका क्या जवाब है उसके बारे में? जैसे जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए गए थे,
मैं तो सोच रहा था रजनी भाई कि एक लाभ की बात सोच रहे थे कि वे पहले से चौथा हो जाए, ये तो कह रहे हैं बहुत लाभ मिल गया, तो मुझे तो चौथे के बाद वाला लाभ तो किसी का दिखता नहीं है, तो चौथा तो हो ही गया होगा इसका मतलब, बहुत कह रहे हैं तो बना दिया, नहीं बता दिया।
चेतन भाई यहाँ पर लगे गाथा चौथ पर से 14 गुण स्थान तक लगे गए थे ना, तो अभी सब मैंने सब्जेक्ट जो सिलेक्ट किए गए थे वो सब बराबर थे, सब्जेक्ट गाथा 6, गाथा 14, गाथा 144 वगैरह। अभी इन लोग नहीं सुन रहे हैं ऐसा मान लो कि विद्वान लोग नहीं सुन रहे हैं, विद्वानों का सिलेक्शन कैसा था? विद्वानों अब मत सुनना, मैं अभी एक एक बोलूंगा कि प्रकाश भाई आप ये सब आप उनको फिर से कभी भविष्य में कभी भी सुनना चाहेंगे आगे। चेतन भाई
क्या बोला आपने?
क्या बोला?
8 दिन, पूरा 8 दिन के लिए बुलाना।
किसको? प्रकाश भाई को,
सबको।
चेतन भाई दोनों,
चेतन
भाई अरुण जी, अभी संजीव जी नहीं सुन रहे हैं।
नहीं मेरे लिए मत पूछना, जब मैं चला जाऊँ ना तब पूछना मेरे लिए, मुंह देख के तिलक करने वाली बात हो जाएगी।
आप अभी इनविजिबल है मान ली। संजीव जी, हेमचंद जी, शैलेश भाई, बहुत अच्छा।
और रजनी भाई ये तो चाहिए ना, इनके बिना कोई नहीं आएगा। और नवीन भाई अपने, और एक बार यहाँ के देवलाली ट्रस्ट,
देवलाली ट्रस्ट को हमारी इतना सुविधा है कि बोलो, दे डोंट इंटरफियर, दे डू एवरीथिंग।
साहब का नाम बोल रहा था आपको।
हाँ जी,
दीपक जी।
हाँ जरूर, दीपक धवल जी। और ये विधान जो किया गया, विधान के लेखक है अभय कुमार जी, तो उनका भी धन्यवाद। अभी और कुछ सजेशन है, समझो कि कभी भी ऐसा प्रसंग आवे भविष्य में कभी भी, तो आपको कुछ माने कुछ त्रुटि लगी इसके अंदर, जोर से बोलिए, वो एक त्रुटि थी। ओके ओके, हाँ तो ठीक है, आपके लिए आपके सब इनपुट के लिए धन्यवाद। हमारे से कोई भी त्रुटि रह गई हो, हमने कुछ किसकी भी कोई अशांत ना की हो है, तो हमारी ओर से हम क्षमा चाहते हैं। प्रारंभ होता है, ऐसी फॉर्मेट के सबको क्वेश्चन दे दिए गए हैं, मेरे ख्याल से अभी ये मान लीजिए आपका कहाँ से हल करना है। शैलेश भाई यू आर द ओपनिंग बैट्समैन, आप ऐसा करो तीन तीन सवाल लेना है, एक एक
एक एक लेते हैं। आप तो मुझे हैंड वाला दे दो, हाथ वाला माइक दे दो, ये उधर रख दो,
ये रख देते हैं।
कितने तीन सवाल लेने हैं? कितने दो
एक यहां
ले लेंगे, सब कर लेंगे हम लोग आपस में कर लेंगे।
तो आज जो पूरा चला हुई है, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री के श्री प्रवचन में आज गाथा 294 के अंतर्गत सबल प्रकाश अभियान सभा की जो बात आई, इसे कृपया संक्षिप्त में सारांश के रूप में समझाएंगे। और संस्कृत के लिए थोड़ा डिटेल करके भी पूरा व्याख्यान में लिया है, और शेष अंश बाकी रहे हैं उसकी अपन कल सुबह के स्वाध्याय में इसके सेशन की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना डिस्कशन हुआ कि पर संबंध का ज्ञान होता है, पर संबंध का जानना होता है तो हमें प्रॉब्लम होता है। एक काम करे कि आत्मा का पर का जानने का स्वभाव ही निकाल दे तो समस्या मिलती है, उसका अपने डिस्कस किया। अब दूसरा जो एंगल है कि आत्मा का पर का जो जानना का स्वभाव है, तो हम फिर पर को क्यों नहीं जानते रहे? जानना सब हम उसको जानना स्वभाव है, तो इसको जाने इसको जाने, फिर आप प्रज्ञा छीन डालने वाली जो सब बात है, राग ज्ञान जान, अभी राग हमारे ज्ञान में ये बन रहा है, जानना स्वभाव है ना, मकान भी हमारा ज्ञान का ग्ने बन रहा है, तो पर को जानना आत्मा का स्वभाव है, तो फिर हम पर को जाने का आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बता तो रहे हैं कि जानना स्वभाव है, तो हम पर को जानते रहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जो दूसरा एंगल है उसकी चर्चा अपन मतलब सुबह के व्याख्यान में उसकी डिटेल से थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे आज जो बताया ना कि सब मीटिंग करके आए कि ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है, ऐसा दूसरे पक्ष के तरफ पहले भी मीटिंग करके आएंगे, फिर उनका सॉल्यूशन अपन करेंगे, बराबर है।
मेरे से एक दो प्रश्न मिलते हुए हैं। पहले गुणस्थान में सदुपयोग कैसे होता है, और दूसरा कि अगर हमसे पूछा जाए सम्यक दर्शन किस गुणस्थान में होता है तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, पहले में या चौथे में। इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि कौन सी मिथ्या दृष्टि या पहले गुणस्थान वाले जीव की बात कही गई है कि जिसको शुद्धात्मा का अवलंबन हो गया, जिसका शुद्ध ध्येय स्थिर हो गया, उपयोग उसमें अटैच हो गया और शुद्ध साधकपना प्रकट हो गया, जो आचार्य ने लिखा है। हर एक मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। तो करण लब्धि प्रविष्ट जो जीव है उसको वहाँ पर सविकल्प स्व संवेदन होता है, इसलिए उसको वहाँ पर उपयोग में उसका शुद्ध आत्मा बैठ चुका है। अब उसका उपयोग उधर से हट के अन्यत्र जाने वाला नहीं है, पर में इस अपेक्षा से उसको आचार्य कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि आदि से बारहवें गुणस्थान क्षीण कषाय पर्यंत गुणस्थान तक शुद्ध उपयोग की प्राप्ति कैसे होती है। तो उन्होंने उसमें जवाब दिया कि उपयोग का लक्षण बनाओ, पहले उपयोग का लक्षण है अवलंबन लेना, निरावलंबी होता नहीं। तो जिस उपयोग ने अपने स्वरूप की महिमा जानकर और उसमें एकाग्रता करता है, और कौन, हर एक नहीं, जो एकदम इतना कि करण लब्धि में प्रविष्ट जिसका हो रहा है, वो जीव को वहाँ पर क्या कहा, शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है। कब? अनिवृत्तिकरण प्रणाम के बाद ही होगी, तभी वो गुणस्थान चौथा प्रकट हुआ कहलाएगा। निर्विकल शुद्धोपयोग तो वहीं होता है, जब होता है तब गुणस्थान चौथा है अनुभूति, उसके पहले क्या कहेंगे। तो एक दूसरा लॉजिक ख्याल में आया, धवला में ऐसा पूछा गया कि छायक चारित्र कौन से गुणस्थान में होता है। रजनी छायक चारित्र बारहवें गुणस्थान में, राइट, बारहवें में होता है, बारहवें में होता है ना पूरा छायक चरित्र। लेकिन जो जीव, जो मुनिराज छपक श्रेणी आरूढ़ हो गए, तो आठवें नौवें दसवें गुणस्थानों में उनका कौन सा चारित्र है। तो वहां पर आचार्य लिखते हैं छायक चारित्र। क्यों लिखते हैं, पूछा कि अभी छय तो हुआ नहीं, बोले उपचार से, क्योंकि वो लेने ही वाला है उसको, इसीलिए छपक श्रेणी ख्याल में। वैसे छे उस समय जैसे वो जाएगा तो ये अपेक्षा समझ लेना, पहले में होता है ऐसा सब जगह प्रचार कर दो कि शुद्ध उपयोग पहले में होता है, फिर उतना ही लेने का जिसका शुद्धात्मा का अवलंबन हो गया और ध्येय स्थिर हो गया, तो वो उपयोग जो स्थिर हो जाता है। आपने देखा होगा आजकल एक वो चित्र निकला था फूलों वूलों वाले ऐसा बहुत, उसको उपयोग को कंसंट्रेट करो तो एकदम उसमें मंदिर और भगवान बैठे दिखते हैं कलयुग। ये तो लौकिक है दृष्टांत, लेकिन यहाँ तो उपयोग कंसंट्रेट कहाँ हुआ, अपने को महिमा लाकर कि ऐसा ही मैं हूँ। चार पॉइंट टोडरमल जी ने दिए हैं, तत्वार्थ श्रद्धा इसी प्रकार है ऐसा ही है, और पर्याय में हम बुद्धि छूट रही है, द्रव दृष्टि हो रही है, उसकी ख्याल में आ गई, सब हकार आ गया। यानी आत्मानुभव लेने से पहले उसका जो सब ज्ञान चाहिए, ज्ञान में निसंगता आ गई। अब वो ज्ञान को मिथ्या कहेंगे सम्यक, तो एक जगह बहुत पहले निकल गया गुरुदेव श्री कुछ में, सम्यक ज्ञानीवत उसका निर्णय पक्का होता है तभी वो करण लब्धि में जाता है, और उसका प्रसार उसका उपयोग इतना अटैच हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तो वो सम्यक ले लेता है। इसलिए कहेंगे तो यही चौथे में होता है सम्यक दर्शन, ख्याल में है ना, अथवा शुद्ध उपयोग चौथे माने जब होता है वास्तव में, तब उसका नाम चौथा गुणस्थान। प्रारंभ कहाँ से होता है, करण लब्धि से। तो जैसे वहाँ उपचार से आठवें नौवें दसवें गुणस्थान में छायक चारित्र कह दिया, ऐसे यहाँ पर समझना। और इसीलिए अपूर्व करण वाले तो को भाव जिन तक संज्ञा हो जाती है, ये समझना। हो गया, आप ले लो, आपका बहुत लंबा लग चैप्टर है।
मेरा तो लंबा ही है अपने तो, अभी तो आप लोगों से कम है ना उम्र मेरी, थोड़ा लंबा चलेगा अपना। एक मुझे इसके बारे में कुछ कहना है, जिनका प्रश्न था उनको एक और मैं अपनी तरफ से कह दूँ
कि प्रश्न के बारे आपस में सबके लिए
नहीं, ये है ना माइक मेरे पास, प्रश्न की तरफ इशारा करने का। सम्यक्त्व कौन से गुणस्थान में होता है ये प्रश्न था, तो सम्यक्त्व पांचवें गुणस्थान में भी होता है, सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान में भी होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौन से गुणस्थान में होता है,
सीधा सातवें तक में,
सीधा सातवें में भी हो सकता है,
वो हमने लिया नहीं करना,
सीधा पांचवें में भी हो सकता है, जो चौथा नहीं हो और पांचवा नहीं हो। माने जिनागम में ऐसा भी कथन है कि कोई जीव मिनिमम मोक्ष जाने के लिए कौन कौन से गुणस्थान में जाना जरूरी है ये बता, कौन से गुणस्थान कंपलसरी गुणस्थान है? तो चौथा कंपलसरी नहीं है, पांचवा कंपलसरी नहीं है, डायरेक्ट सातवें में चला जाए। तो प्रश्न हुआ था कि सम्यक दर्शन कौन से गुणस्थान में, तो हमारी दृष्टि चौथे तक ही जाती है, पांचवा भी हो सकता है, सातवा भी
नहीं। प्रश्न ऐसा था कि पहले में माने या चौथे में, इसलिए उतना जवाब
तो हमने कहा पांचवें सातवें में भी मानो।
हम वो प्रश्न होता उसका भी जवाब है, वो जो जीव होता है जो सातवें में जाता है पहले से पक्का सच्चा द्रविलिंगी होता है।
ये मेरे पास आया है ऐसा कुछ,
उसका निर्णय पूरा पक्का होता है और अंदर में इतना उसको उपयोग भ्रम जाता है कि सीधा तीन कथा चौकड़ी का वो सम करके
इस चिट्ठी को बांच दो आप, क्या है गुजराती मेरे को नहीं आती है,
लंबा है बहुत।
अरे तो एक मिनट का है बाकी, तो दो शब्द हैं, एक है त्रिकाली ध्रुव ध्रुव और एक है उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्। दोनों में ध्रुव और द्रव्य भेद समझाने की कृपा कीजिए। देखिए ध्रुव अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है क्या, और विशेष स्पष्टीकरण आपको जानना हो तो प्रवचन सार गाथा नंबर कितनी है, 102 नंबर प्रवचन सार गाथा नंबर आप वहां से जाने। ध्रुव और द्रव्य का अंतर जानना हो तो बड़ी सुंदर चर्चा
है,
100 और 101 का गाथा नंबर। देखो मैं बतलाता हूँ आपको, ये जो है द्रव्य का अर्थ, ध्रुव का मतलब तो है जिसमें परिणमन नहीं होता, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव में परिणमन नहीं होता, ध्रुव कुटस्थ है, ध्रुव में उत्पाद व्यय नहीं है। और उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय ऐसा जो चलती हुई निरंतरता है उसका नाम है द्रव्य। क्या समझ में आया? उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय जिसके अंदर निरंतर चलता रहे ना, ये इस प्रवाह का नाम है द्रव्य। और ध्रुव है वो है अपरिणामी, ये उसका संक्षिप्त अंतर है। आप वो गाथा 100-101 के आसपास का जो प्रकरण है आप उसको गहराई से देखना, गुरुदेव ने इतने सुंदर व्याख्यान किए हैं उसके ऊपर, मैंने सुने हैं पढ़े भी हैं, मैंने उनमें इतनी सुंदर और मार्मिक चर्चा आई है, मैंने गुरुदेव के प्रवचनों को सुनने पर ही ध्रुव और द्रव्य का अंतर ख्याल में आया, नहीं तो ध्रुव और द्रव्य का अंतर ख्याल में नहीं था। बरसों से हम यही समझते थे कि ध्रुव माने द्रव्य और द्रव्य माने ध्रुव, एक ही बात है, लेकिन जब गुरुदेव ने उस विषय को खोला तो वो बात बहुत क्लियर हुई, बहुत स्पष्ट हुई। और गुरुदेव की बात तो गुरुदेव की ही है सच में, वो जिस विषय को उठाते हैं उस विषय को पानी की तरह इतना निर्मल कर देते हैं कि आपको उसके संबंध में कोई शंका नहीं रहे। तो मेरा पर्याय नहीं है, वो निरंतरता है उसमें, वो ध्रुव ध्रुव जो है उत्पाद व्यय सहित नित्यता का नाम द्रव्य है, वो नित्यता है, वो द्रव्य माने नित्य है, लेकिन वो नित्य क्या, उत्पाद व्यय के साथ में जो है वो नित्यता को लेना,
पूरी वस्तु को,
पूरी वस्तु को
ले सकते हैं कि जैसे उत्पाद का 33.33%
व्यय का
33.33%
ऐसा नहीं है, सभी 100% है,
सब 100% है, सभी 100%
सब 100% है, और सबको 100% नहीं माने तो सोटे पड़ते हैं, सोटे का हकदार होता है। चलिए आपने कहा कि आजकल तो ध्यान भी सामूहिक होने लगा है, तो क्या ऐसा ध्यान उपयुक्त नहीं हो सकता, ऐसे ध्यान शिविर नुकसानदायक होते हैं क्या? भाई ध्यान किसका करना है, ध्यान में यदि बगल वाला दिख रहा है तो फिर ध्यान नहीं हो रहा है। ध्यान तो एकाग्रता का नाम है, एकाग्रता अकेले में हुआ करती है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना आपका उपयोग भ्रमित होगा। ध्यान के लिए हमारे मुनिराजों ने साधना करने के लिए एकांत स्थान चुने, ग्रीष्म ऋतु में कहाँ, शीत ऋतु में कहाँ, तरुतल वर्षा के नीचे, गर्मियों में शिखर के ऊपर जहाँ कोई नहीं जाए, गर्मियों में कौन जाता है मई जून के महीने में शिखर जी के पहाड़ पर, सर्दियों में दरिया किनारे जाकर के कौन बैठता है। मैंने ऐसे स्थान हमारे मुनिराज ध्यान के लिए चुनते हैं जिन स्थानों पर कोई दूसरा व्यक्ति न आ सके। रही बात इसकी कि वो नुकसानदायक होते हैं, अब नुकसान और फ़ायदा आप किस अपेक्षा से कहना चाहते हैं, आपका शारीरिक लाभ को फ़ायदा समझ रहे हैं तो समझ लो, तभी ठीक हो जाएगी। सब लोग पता नहीं काय काय का ध्यान कराते हैं, हम तो यहाँ आत्म ध्यान की बात करते हैं भाई, आत्म कल्याण की बात करते हैं। सो व्यक्तिगत चीज़ है, वो समूह में नहीं होती है, वो पर्सनल चीज़ है ना, ये ध्यान रखना। प्रवचन सार गाथा 80 को समय सार गाथा 144 के फ्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, थोड़ा सा विस्तार होगा, संक्षेप में तो एक वाक्य में कह सकता हूँ ऐसा कि जो प्रवचन सार 144वीं गाथा में निर्विकल्प होने की बात कही है, वहाँ विकल्पातीत होने की बात कही है, वहाँ पक्षातिक्रांत होने की बात कही है। 144वीं गाथा पक्षातिक्रांत की चर्चा कर रहे हैं ना, तो वहाँ जो पक्षातिक्रांत होने की बात कही, तो हमारे यहाँ इस प्रवचन सार 80वीं गाथा में पहले पक्ष प्रस्तुत किया, द्रव्य गुण पर्याय से जानो, और ये द्रव्य गुण पर्याय से जानकर जो पक्ष प्रस्तुत किया इसका उद्देश्य भी पक्षातिक्रांत होना ही है। जब तक पक्ष में नहीं आएगा तब तक पक्षातिक्रांत कैसे होगा? पक्ष के बिना पक्षातिक्रांत नहीं होता, विकल्प के बिना विकल्पातीत नहीं होता। जिस तरह पक्षातिक्रांत के लिए पक्ष जरूरी है 144वीं गाथा की चर्चा, तो यहाँ 80वीं गाथा में वो निर्विकल्प होने के पहले होने वाले विकल्प बतलाए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में आखिर सम्यक दर्शन होने के तत्काल पहले कौन से विकल्प आते होंगे, वो चर्चा प्रवचन सार 80वीं गाथा में की गई है। तो इसको इस तरह से निर्विकल्प अनुभूति के रूप में उसे जोड़ा जा सकता है। पक्षातिक्रांत की चर्चा दोनों ही स्थानों पर है, माने 144वीं गाथा का प्रयोजन भी वही शुद्धात्मानुभूति है, निर्विकल्प अनुभूति है, और जो प्रवचन सार 80वीं गाथा है उसका प्रयोजन भी निर्विकल्प आत्मानुभूति ही है। मैं निपटा लेता हूँ एक मिनट।
किसमें
मिलन किया?
हाँ हाँ हाँ,
निर्विकल्प किया वो, और जो श्रुतना की बात की विकल्पों को सीमित किया वगैरह वो कैसे?
वो वही श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं। देखो 80वीं गाथा के अंदर जिन श्रुत ज्ञान के विकल्पों की बात कही, निर्विकल्प होना है ना, तो श्रुत ज्ञान संबंधी विकल्प चाहिए। अब आप कहेंगे श्रुत ज्ञान संबंधी विकल्प दो इंद्री को है या नहीं है? बोलो क्या पूछ, क्या कहना है आपको? है श्रुत ज्ञान है उसके, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है उसके, दो इंद्री के, असैनी पंचेंद्री के, सैनी पंचेंद्री जीव के, गाय भैंस कुत्ता बिल्लियों के श्रुत ज्ञान संबंधी विकल्प तो हैं, लेकिन कौन से विकल्प चाहिए इस पक्षातिक्रांत के लिए? तो वो जो श्रुत ज्ञान संबंधी नए विकल्पों की चर्चा की 144वीं गाथा में, क्योंकि नए पक्ष की चर्चा चल रही है पूरी, यह एव मुक्त्वा नए पक्ष पातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जाले चित्त शांत चित्तास्त एव साक्षात अमृतम पिबंती, ये चर्चाएं वहां की हैं। ये श्रुत ज्ञान संबंधी वस्तु स्वरूप संबंधी जो विकल्प हैं उन विकल्पों को वहां श्रुत ज्ञान के विकल्प के अंतर्गत शामिल किया 144वीं में, और वो वस्तु स्वरूप क्या है? वही वस्तु स्वरूप यहां द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अरहंत परमात्मा और आत्मा को जानने में लगाए। इस तरह जो श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प का जो विषय है, वो विकल्प का विषय है प्रवचन सार 80वीं गाथा और समय सार 144वीं गाथा, दोनों में विकल्प का विषय एक ही है, और विकल्प तोड़ करके निर्विकल्प अनुभूति की बात है।
और जो प्रवचन सार की 191 गाथा चल रही वो भी इसी से लिंक है, सुधने के विषय में आकर के।
आगे आएगी, कल करेंगे चर्चा थोड़ी सी, क्योंकि गाथा 80 भी पूरी करनी है ना अपने को। कल तो उसका विषय पढ़ना तो है ही, पूरी तो होती नहीं है। देखो गाथा तो सच में, तो बात तो ये है, कोई कहे सब गाथा तो पूरी कर दो आप, गाथा पूरी होती नहीं है। गाथा कभी पूरी होती है क्या? वो गाथा तो तब पूरी होगी जब मोहो खरुजादी तस्य लयम, गाथा तो तब पूरी होगी। हाँ, पाठन पूरा हो सकता है, पठन पूरा हो सकता है, सो अपन कल उसको पूरा करेंगे। पूजन आदि के बाद जब हम तीर्थंकर भगवान जिनवाणी वीतरागी जैन धर्म आदि का जयकारा करते हैं, तब साथ साथ में हमें सम्यक दृष्टि पुरुषों का जयकारा करना उचित है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, भगवान सामने विराजमान है, तीन लोक के नाथ सामने विराजमान है, उनके सामने किसी की भी जय नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर चाहे गुरुदेव ही क्यों ना हो, गुरुदेव की अनंत श्रद्धा है मेरे हृदय में, मैं उसको रख के बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति मेरे ऊपर ये उंगली उठाने का प्रयास नहीं करें कि आप गुरुदेव का अपमान कर रहे हैं। मैं गुरुदेव का अपमान स्वप्न में भी नहीं कर सकता, क्या वो तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन स्थान स्थान की बातें है। ठीक है ना, जगह जगह की बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहिए कि नहीं, जय जयकार करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री सामने बैठा हो तो मुख्यमंत्री के गीत गाए जाने चाहिए कि नहीं? बोलो क्या करना?
जिनवाणी स्तुति की बात तो कर सकते कि नहीं? जयकार
नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो एक योग्य स्थिति है, वो मर्यादा के अंदर ही काम किया जाना चाहिए। गुरुदेव हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, आज जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, कर रहे हैं, जिस तत्व ज्ञान को हमने समझा है, जिनवाणी माँ के हार्द को खोलने के लिए अनंत 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 उपकार है। हमारे देह के भीतर जो रक्त है, उस रक्त की बूंद बूंद भी यदि निकाल ली जाए तो गुरुदेव के उपकार को भुला नहीं सकते, हम चुका नहीं सकते, इतना उपकार है गुरुदेव का। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप गुरुदेव के उस उपकार के सामने साक्षात तीर्थंकरों की महिमा और उनके उपकार को गौण कर दो। भगवान भगवान है भाई साहब, समझ रहे हैं ना आप, तीन लोक के नाथ हैं वो, गुरुदेव तीन लोक के नाथ बनेंगे। गुरुदेव की महिमा इसलिए कि उन्होंने तीन लोक का नाथ बनने का मार्ग बतलाया, लेकिन तीन लोक के नाथ से ज्यादा महिमा कैसे हो सकती है? सो बी केयरफुल। कोई बात नहीं, मुझे इस संबंध में ज्यादा नहीं कहना है साहब, बहुत मैं डरता हूँ, मैं इतना बोल लिया इस संबंध में, इसमें मुझे डर लगता है ना। हाँ वो देखो कह रहे डरो थोड़ा सा।
नहीं नहीं भाई साहब का ही प्रश्न है, इनको बोल लें तो। हाँ बोलिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लेना चाहिए।
नियम सार में श्लोक है कि वितराग देव और निर्गत भोग में किस तरह हम डिफरेंस कर सकते हैं?
हाँ हाँ,
एक श्लोक है दूसरा।
हाँ बराबर,
श्रीमान जी ने बोला प्रत्यक्ष सदगुरु समय नहीं परोक्ष जिनो उपकार, तो ये दोनों कैसे आप?
देखो प्रत्यक्ष जो गुरु हैं उनका जिनेंद्र भगवान जैसा उपकार है तो हम कह ही रहे हैं ना, गुरुदेव ने हमारे लिए तीर्थंकरों जैसा उपकार किया है, हम बोल रहे हैं, हम कह तो रहे हैं गुरुदेव का उपकार हमारे लिए तीर्थंकरों जैसा उपकार है।
जय नहीं बोला, जयकार नहीं बोला उनके सामने,
भगवान के सामने नहीं।
जिनवाणी स्तुति के
देवशास्त्र गुरु तीनों आएंगे,
प्रश्न के
भगवान के सामने देवशास्त्र गुरु की जय हो सकती है, दिगंबर संतों की जय हो सकती है, आचार्य कुंद कुंद की जय हो सकती है, लेकिन प्रतिमाधारियों की पंचम गुणस्थानवर्तियों की जय नहीं हो सकती। गुरुदेव अपने आप को चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कहते थे, इसमें कोई दोहराव नहीं है कि गुरुदेव का जीवन पंचम गुणस्थानवर्तियों जैसा था,
देखा।
उनका बाह्य आचरण भी इस तरह का था, इतना उत्कृष्ट आचरण था कि वर्तमान में तो बड़े बड़ों का नहीं दिखता है, इतना उत्कृष्ट बाह्य आचरण था गुरुदेव का, लेकिन वे स्वयं अपने आप को अविरत सम्यक दृष्टि कहते थे।
और भी लोग इसमें ये प्रश्न उठाते हैं कि छड़ाला में लिखा है चारित मोह वश लेसन संयम पे सुरनाथ जजे
है, महिमा की बात है। हाँ।
तो हम जिनवाणी के बाद यदि परम पूज्य गुरुदेव श्री न जय हो ऐसा बोले तो इसमें कौन सा विद्यार्थ का दोष लगता है? इसको क्लियर कर, नहीं नहीं कोई चिंता, देखिए स्पष्ट होनी चाहिए ना, मत क्या है जिनवाणी है तो इसमें क्या है?
चलो चलें आगे,
चलो
आगे चलते हैं भाई, किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करना भाई, मैंने तो मेरे भाव व्यक्त किए हैं, मेरे तो चीर के देखोगे ना तो गुरुदेव ही निकलेंगे अंदर से,
बराबर
है कोई, इसलिए अन्यथा अदरवाइज मत लेना किसी बात को, क्योंकि श्रद्धा का विषय है, उसके संबंध में कोई बात नहीं है, लेकिन बात जो योग्य है वही होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो ये प्रश्न आया है मेरे पास में, व्यक्तिगत बात होती है ना, ये ऐसे नाम से नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक नहीं लगता है, ये प्रश्न ऐसा जो मेरे से पूछा है। आगे प्रश्न है, सर्प के छत्र वाली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को हमें वंदन करना चाहिए कि नहीं? कर सकते हैं, ये समझ सकते, क्योंकि वो सर्प के छत्र वाली जो प्रतिमा है जिसपे सर्प लगा हुआ है सर पर, वो भगवान की तो नहीं है, ठीक है ना, भगवान के माथे पर उपसर्ग नहीं हो सकता। तो यदि उस प्रतिमा को मुनि अवस्था की माने तो मुनिराज भी हमारे लिए वैसे ही पूज्य हैं, क्योंकि जब हम पूजन देव शास्त्र गुरु तीनों की सम्मिलित पूजन करते हैं तो जैसे गुरु पूज्य हैं वैसे भगवान पूज्य हैं, तो गुरुओं को भी अर्घ चढ़ाया जाता है, भगवान को भी अर्घ चढ़ाया जाता है, तो उनकी प्रतिमाओं को, फन वाली प्रतिमाओं को वंदन करने में किसी भी तरह का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुनि पार्श्वनाथ के रूप में,
और इसलिए मंगलायतन में बाहुबली मुनिराज की मूर्ति है और बाहुबली भगवान की मूर्ति है, जिन्हें देखा होगा ख्याल में है ना, जिसमें बेले चढ़ी है मौलिक है बाहुबली मुनिराज, और जहाँ बेले उतार दी गई और वो बिल्कुल जैसा भगवान की है वैसा बाहुबली भगवान लिखा है। इसके प्रश्न के बारे में मैं जवाब देता हूँ, प्रश्न है नहीं ख्याल है,
हाँ हाँ यहाँ से बोलो ना,
हाँ बोल रहा हूँ,
सिद्ध भगवान
मैं बोलता हूँ, नहीं कुछ नहीं, पूरा पढ़ने दो, सभी ने सुना है। चेतन भाई जी ने हमें बताया था कि सिद्ध भगवान को पहले समय के बाद छायक भाव नहीं रहता, नहीं ऐसा अभिप्राय नहीं था, बात ऐसी है कि जो जिस समय क्षय हुआ कर्मावरण का जो भी, और छायक अनंत चतुष्टय आदि व्यक्त हुआ और आठवें कर्म चले गए तो वो सिद्ध परमिष्टि हो गए, तो जिस समय कर्म का अभाव होना और वहाँ पर सिद्धत्व की प्राप्ति होना, तो उस क्षण में वो छायक भाव उत्पन्न हुआ कहलाता है टोटल। अब उसके बाद जो आज से अनंत अनंत काल पहले सिद्ध हुए अभी तक वो ही प्रवाह चल रहा है, तो जिनवाणी में नियम सार में उनके दो ही भाव कहे, पारिणामिक और छायक कहेंगे यही, क्योंकि पर्याय के बिना तो कोई द्रव की स्थिति होती नहीं। लेकिन जब उस एंगल से देखते हैं कि निमित्त निमित्त एक संबंध एक वर्तमान की अवस्था में माना जाता है, और दूसरा तर्क ये है कि जैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय कालाणु इनके कोई पर्याय है कि नहीं, ये बहुत पहले चर्चा चलती थी कि वे तो शुद्ध द्रव्य हैं तो शुद्ध पर्याय है, कब से है अनादि पर्याय है कि नहीं, पर्याय के बिना नहीं होता, वो अपेक्षा से कि जब क्षय हुआ कर्म का तो छायक भाव प्रकट हुआ कहलाता है, बाद में वो तो छायक छायक चला जाता है, तो वो अपेक्षा भेद लेना था, बाकी छायक रहेगा लेकिन छायक शब्द का प्रयोग जो करेंगे जब कर्मावरण का क्षय हुआ और उस सिद्धत की प्राप्ति, वो अपेक्षा थी, बाकी उसमें कोई अंत नहीं
तो रहता है ना,
ये सब अपेक्षा
छायक भाव रहता है वैसे दो के,
हाँ
ठीक है ना, ऐसा ही उसका अर्थ है, एक समय नहीं
शादी अनंत,
शादी अनंत,
वो थोड़ी पर्याय रूप हो जाएगा, लेकिन पर्याय रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी हर समय नया नया पर्याय के जीवन, एक समय का हर समय नई अनंत सुख
पर्याय। एक लास्ट प्रश्न है, सम्यक दृष्टि पुरुष के फोटो को वंदन करना चाहिए या नहीं, भगवान के फोटो को भी वंदन नहीं करते हमारे यहाँ, ठीक है ना, तो कोई बात है ही नहीं।
गाथा 294 में आधार और ज्ञान की पर्याय का देर ज्ञान कराया है या त्रिकाली आत्मा का, अथवा दोनों बातें की है, देर ज्ञान के लिए दो पार्टी होनी चाहिए, एक तो राग है और उसके सामने जो ज्ञायक भाव भगवान आत्मा, और गुण भेद करके ज्ञान पर्याय को लिया है, जैसे ज्ञायक भाव कोई देना मतलब वो पर्याय की ओर से कहा है, एक तरफ शुद्धात्मा ज्ञायक भाव है और एक तरफ राग है, जैसे 72 गाथा में एक तरफ भगवान आत्मा है और एक तरफ आश्रव, आश्रव के तीन लक्षण बताए, असुचि बना विपरीतता और उसके सामने भगवान आत्मा बताया, क्योंकि एक तो जो बात आती है कि आश्रव निरोध संवर, आश्रव के अभाव में संवर प्रकट होता है, लेकिन वो तो अभाव होता है तब संवर प्रकट होता है, यहाँ तो जब भेद ज्ञान करना है तो दोनों चीज मौजूद होनी चाहिए, तब उसमें प्रज्ञा क्षणि डालने की बात है, तो एक तरफ राग है और एक तरफ ज्ञान कहो कि ज्ञायक कहो, और ये जो प्रज्ञा क्षणी जो डलती है वो तो नया प्रज्ञा क्षणी जो अंतर ज्ञान होता है और संवर निर्जरा प्रकट होता है वो नया होता है, ये भाव है। और जो दूसरी बात है इसमें कि जो वेद ज्ञान की बात आई है तो ये कि आत्मा में राग नहीं है और राग में आत्मा नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर जब ज्ञान अंतर्मुख होता है तो जो निर्मल दशा प्रकट हुई, अब पर्याय की बात करते हैं, अब पर्याय की, तो पर्याय में भी इतनी पवित्रता हो गई कि अब चारित्र का दोष वाला राग है, अब द्रव्य की बात तो छोड़ो, लेकिन जिस पर्याय ने द्रव्य का शरण लिया तो पर्याय के अंदर भी जो बोलते हैं ना ज्ञान धारा और कर्म धारा तो चालू हो गई, तो वो दोनों भी ज्ञान धारा और कर्म धारा, तो ज्ञान धारा है वो पवित्र है और कर्म धारा है वो अपवित्र है। माने जैसे त्रिकाली ध्रुव में क्यायक भाव में राग नहीं है, उसी प्रकार उसके आश्रय से जो निर्मल दशा प्रकट हुई उसमें भी राग नहीं है, वो भी अलग है और एक साधक भाव पाधक भाव दोनों अलग अलग है। और एक है समय सार गाथा 294 के मर्म को हम समय सार गाथा 144 के फ्रेमवर्क में परिवर्तित कर सकते हैं, कृपया विस्तार से समझाइए। बात तो वही है जैसे 294 में प्रज्ञा क्षणी की बात है ना, अंतर्मुख ज्ञान जब जाता है, उसी प्रकार 144 गाथा में भी मति ज्ञान तत्व और सत्य ज्ञान तत्व को कहाँ ले जाते हैं, अंतर्मुख जब ले जाते हैं तब समय सार सम्यक ज्ञान जो कहते हैं पक्षाधिक्रांत दशा होती है। ये प्रज्ञा क्षणी डालना माने उसी का नाम, जब स्वानुभूति हुई तो जी पक्षाधिक्रांत हो गया, अलग अलग एंगल से बात समझाई है। बात इतनी है कि जैसे वह मति ज्ञान सुप्त ज्ञान से जो निर्णय किया, फिर वो धारणा ज्ञान हुआ, विकल्पात्मक धारणा ज्ञान हुआ, फिर वो धारणा ज्ञान फिर अंदर जब उस प्रकार से परिणमन होता है तो इसे भगवती प्रज्ञा कहते हैं, और वहाँ अपेक्षा सम्यक समय सार सम्यक ज्ञान वगैरह जो संज्ञा देते हैं, तो बात तो वहाँ वही की वही बात है। और एक थोड़ा यहाँ स्क्रीन पर तो अभी ज्ञान गोष्ठी चलेगा, हाँ तो एक जो अपना चल रहा है ना अभी इसके साथ रेफरेंस वाली बात है, निकालो ज्ञान गोष्ठी, दो मिनट में ले लेते हैं तो
जब तक दूसरे प्रश्न ले लो।
हाँ अच्छा उन्होंने बताया कि अच्छा तब तक दूसरा ले लेते हैं अपन। एक है अंतर्कृत केवली सुकोशल मुनिराज कैसे होते हैं, केवलियों के ऐसे अन्य प्रकार कितने होते हैं, तो केवली के अन्य अन्य प्रकार बताए हैं, जैसे पांच कल्याणक वाले हैं, तीन कल्याणक वाले, दो कल्याणक वाले, फिर सापिशय केवली होते हैं, फिर मुख केवली होते हैं, फिर अंतर्कृत केवली जो बताया, फिर उपसर्ग केवली, ऐसे अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे अपने भरत राम क्षेत्र में जो होते हैं उनके पांच कल्याणक होते हैं, तो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली है, विधि क्षेत्र में पंच कल्याणक वाले भी होते हैं, और चौथे पांचवे गुणस्थान के बाद में जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, चौथे पांचवे गुणस्थान के बाद में वो चौथे पांचवे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो उनके तीन कल्याणक हो गए, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, और फिर मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा तो दो कल्याणक हो गए, तप कल्याण नहीं होगा उनका, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक दो होंगे, जैसे तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली होते हैं। और एक जो बताया सापिशय केवली होते हैं कि जिनको समोक्षरण ऐसे नहीं लगते, लेकिन सामान्य बंद कुटी वगैरह जो लगती हैं जिनकी भी दिव्य ध्वनि खिलती है, जैसे रामचंद्र जी थे तो उनकी गंध कुटी लगी, देशभूषण कुलभूषण तो उनकी भी गंध कुटी लगी, तो उनको जैसे छोटी धर्मसभा ऐसा बोलते हैं तो वो सापिशय केवली है। और एक उपसर्ग केवली होते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान भी उपसर्ग हुआ, ऐसे जिनके पर उपसर्ग होता है और फिर केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद में लंबे टाइम रहे तो उपसर्ग केवली में गए, ये अंतःकरण केवल में क्या होता है कि उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान हुआ और तुरंत तुरंत अंतर अंतर्मुख में उसी दशा को प्राप्त कर लेते हैं, वो अंतःकृत केवल है। इस प्रकार से अलग अलग जैसे केवल के भेद देखे जाते हैं। अनुबद्ध केवल पे जो हुआ ना अपने भगवान महावीर स्वामी के तुरंत बाद गौतम स्वामी फिर सुधर्म स्वामी फिर जम्मू स्वामी के बाद कंटिन्यू जो होते हैं वो अनुबद्ध केवल है।
आपको
सीधा हाथ पे आती है
लाइट तकलीफ नहीं दे रही। इसके लिए है मुझे कि जो अपना जो डिस्कशन चल रहा है सभी कल प्रवचन सार जो गाथा सर्विकल संवेदन नेत्रिकल संवेदन वाली जो बात है ना, मैंने गुरुदेव श्री ने जो एक बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है आपको
बोलो
इसमें देखेंगे
बता दो।
145 नंबर का
आप ही पढ़ दीजिए।
हाँ मैं तो पढ़ता हूँ लेकिन यहाँ जब तक मेरे पास कौन
सा
ज्ञान गोष्ठी में 145 आ गया नंबर 145 नंबर का बोल निकाल दो। मानी बात तो वही है लेकिन मतलब उसके आगम के हिसाब से उसको कैसे समझना है। गुरुदेव ने अपने भाव से बात स्पष्ट की है बहुत आपको अच्छा वन फोर फाइव हाँ देखो सुनना अनादिना अग्नानी जीव ने सम्यक दर्शन पाम्या पहला तो एकलो विकल्प ज होय ने आप आंसर पढ़े बिना आप जवाब दो पहले। सम्यक दर्शन पाम्या पहला शू होय एकलो विकल्प ज होय के समझाय ने कितनो सरल जवाब आपे छे गुरुदेव श्री। सम्यक दर्शन पाम्या पहला एकलो विकल्प ज होय सामान्य रीते आपणे तरत ज कही सके भाई सीधी बात से नहीं हमारा सुसम्य दर्शन पाने पहला तो शुरू होए विकल्प ज होए पची ने विकल्प दशा नहीं मान तो गुरुदेव से ये जवाब आप दे से सो जवाब आप जो सो लखी से ना पची सबले ना तो पची सबले एकलो विकल्प नहीं पण एकलो विकल्प नहीं है मतलब विकल्प तो छे हमें ना नहीं पण लगे कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है इसलिए विकल्प नहीं है ऐसा नहीं कहते विकल्प है लेकिन स्वानुभूति होने के पहले अकेला विकल्प नहीं है स्वानुभूति नहीं हुई है स्वानुभूति नहीं होने के पहले अकेला विकल्प है ऐसा भी हम नहीं कहते हैं विकल्प ना अकेला विकल्प नहीं है स्वभाव तरफ ढली रहेला जीव ने स्वभाव की ओर ढल रहा है ना पक्षातिक्रांत प्रज्ञा क्षेणी पटक रहा है अश्विनी गाथा वाला भाव अलंकरण अपूर्वकरण रहेला जीव ने विकल्प होने के बावजूद विकल्प होवा छता उसी समय आत्म स्वभाव के महिमा का लक्ष्य भी काम करता है। अंदर में अपना द्रव्य स्वभाव का महिमा है विकल्प का नहीं द्रव्य स्वभाव का महिमा आ रहा है ठंडी हवा आ रहा है और सुनना अने ते लक्षणा जोरे माने अपने जो द्रव्य स्वभाव उसका जो बहुमान आ रहा है ना उसका जो जोर है द्रव्य स्वभाव के जोर से वह जीव आत्मा की ओर आगे बढ़ता है। मैंने उस दशा को गुरुदेव जी अकेला विकल्प कहने के लिए तैयार नहीं है
फोकस है
हाँ फोकस यहाँ अकेला विकल्प कहने के लिए नहीं है काई अब देखना इतनी बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बात है काई विकल्प ना जोर थी आगण नहीं बढ़ा तू अकेले विकल्प के जोर से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है अंदर में अपना निर्विकल्प स्वभाव के महिमा के बिना कोरे विकल्प के द्वारा आगे कभी बढ़ा जा सकता नहीं है और निर्विकल्प स्वभाव की महिमा आए तो विकल्प टलता जाता है होता है लेकिन उसका महिमा नहीं है निर्विकल्प स्वभाव का जोर होता है तो उस उसका नाम दिया है देखो काई विकल्प ना जोर थी आगर नहीं बढ़ा राग तरफ का जोर टूटने लगा और स्वभाव के तरफ के जोर बढ़ने लगा स्वभाव तरफ जोर बढ़वा लगे उसकी ओर जोर घटवा लगे वहां
सविकल्प दशा होने के बावजूद भी अकेला राग काम नहीं करता है,
इसलिए उसको
तो फिर क्या काम करता है देखना। पर लेकिन राग के अवलंबन बिना का, राग के अवलंबन बिना का स्वभाव की तरफ के जोर वाला एक भाव काम करता है। अब आप प्रश्न मत करना कि वो भाव का क्या नाम, क्योंकि आपको प्रश्न ही करना है, फिर वो भाव का नाम हम बता देंगे तो कर लेंगे आप। बात समझ में आती है ना, बस बता दिया स्वभाव तरफ जोर वालो एक भाव, बता दिया ना स्वभाव तरफ जोर वालो एक भाव, कि जेमा विकल्प में जोर तुटू जाए से ना स्वभाव में जोर, एवो एक भाव कि ज्यां मात्र एकलो विकल्प नथी अने स्वभाव तरफ ना जोर वालो भाव। देखो काम त्या काम है अने तेना जोरे आगळ वधतो वधतो पुरुषार्थ नो कोई अपूर्व कड़ाको करीने निर्विकल्प आनंद ना वेदन सहित सम्यक दर्शन पामी है। सविकल्प संवेदन निर्विकल्प,
आचार्य ने वही बात लिखी है ना, शुद्धात्मा का अवलंबन इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब उसकी दृष्टि वहां से डाइवर्ट नहीं, और वो इसलिए उसको सविकल्प से निर्विकल्प का शुद्धात्मा भी मैं कहती हूँ।
अभी मैं पूरे हो गए,
मैं ले लेता हूँ
अभी अभी एम चेंजी के हैं, दो मिनट
जल्दी कर दो।
हाँ स्क्रीन नहीं बंद कर दो
नहीं, मेरे ख्याल से कल ज्ञान गोष्ठी नहीं है नरेंद्र, तो फिर मेरे ख्याल से अगर आप लोग साथ दें, आप सबकी परमिशन हो तो ये सब निपटा दें, आपका भी बड़ा है ये काफी,
मेरे को तो 5 मिनट में निपटाऊंगा मैं तो।
हाँ तो ठीक है, हम भी जल्दी करते हैं,
मुझे तो सब आता है,
मतलब 5-10 मिनट ओवर हो जाए तो विकल्प नहीं करना, बैठो। लक्ष्य पूर्वक वेदन पूर्वक और तन्मयता से जानना हुआ किस प्रकार के ज्ञान का स्वभाव नहीं है, केवल ज्ञान का या मति श्रुत का या सभी ज्ञान का। मुख्य रूप से रागी विकल्प बुद्धि वाले जीव लक्ष्य पूर्वक जानते हैं, और जो भीतरागी होते हैं उनको लक्ष्य पक्ष कुछ रहता नहीं, वो स्वरूप के गुप्त रहते हैं। एक चीज मुख्य रूप से और आगे चलें तो केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान हमने बताया था कि 12वें गुणस्थान के बाद जो केवल ज्ञान हुआ तो 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार था, उपयोग मति श्रुत ज्ञानों पर स्थिर था, श्रुत ज्ञान उपयोग, और उस पूरी अल्पक दशा का व्यय और केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञानी जहाँ लीन थे अल्पक दशा में शुद्धात्मा में पूर्ण उसी में ही लीन रहते हैं, इसलिए कहा सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, माने वे लक्ष्यपूर्वक अब तीन काल तीन लोग को जानने नहीं जाते, वहाँ लक्ष्य नहीं है पक्ष नहीं है, तो पूरा शुद्धोपयोग का फल प्रकट है और अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, तो लक्ष्यपूर्वक नहीं जानते और वेदन पूर्वक नहीं जानते। नारकी के कितने दुख हैं वो अभी लिया था ना, वो लिखा है कि अरे इतने तो कितने, तो उनको वेदन तन्मय नहीं होता, एक चीज, और वेदन भी तन्मय नहीं होता तो वेदन नहीं होता, ज्ञान उपयोग यहीं रहता है, ये दिव्यता है ज्ञान की, ऐसा प्रवचन सार जी में कई जगह सिद्ध किया गया है। हम आपको कहा जाता है लक्ष्य पूर्वक, पहले पक्ष में आओ, किसके, अज्ञान का पक्ष छोड़ो सच्चे ज्ञानियों के पक्ष में आओ, व्यवहार का पक्ष छोड़ो निश्चय के पक्ष में आओ, देखो तुम्हारा स्वरूप ऐसा ऐसा उसकी महिमा जगा के, अगर वो बात पकड़ में आ गई सिद्ध समान सदा पद में रहो, तो बोले अब तुम क्या शुद्धने से शुद्ध हो कि स्वभाव से शुद्ध हो, तुम्हारा स्वभाव ही शुद्ध है, तो बस स्वभाव की बात करो, पक्ष भी छोड़ के पक्षातीत हो जाओ, इस प्रकार का है। जब जीव शुक्ल ध्यान में अंतर्मूर्त तक टिक जावे तो उसे केवल ज्ञान होता है, वो सिद्ध है, या अंतर्मूर्त का मतलब 48 मिनट होता है कि 48 मिनट तक का यथा 7वें गुणस्थान से 13वें तक की प्राप्ति का कुल काल अंतर्मूर्त है, एक मूर्त 48 मिनट का होता है, और उससे बहुत भीतर मध्यम अंतर्मूर्त के हिसाब से चर्चाएं आगम में लिखी गई। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तो एक समय कम 48 मिनट में हो, तो जगन ने जो जितना लिया कितना एक आवली और जो भी यथायुग ले लेना बस उसमें, और हर एक गुणस्थान का भी समय एक अंतर में, माने इतना सूक्ष्म वो है,
48 मिनट नहीं है कुल मिला के, बात है यथायोग्य अंतर,
यथायोग्य
अंतर। ये तो फ्रेम
एकार चिंतन रूप ध्यान समय सार गाथा 294 प्रचन सार गाथा 80 के संदर्भ में सूत्र की स्पष्टता करें। पूरा सूत्र ऐसा है, वो मैं बताया था, लंबा जाएगा। अपने
उत्तम
संगनन से काश, उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्ता। उत्तम संगनन वाले जीव को ध्याता कौन होगा आगम की दृष्टि से? उत्तम संगनन वाला। और ये बात कल मैं बताना चाहूँगा, 196 गाथा जो प्रवचन सार उसकी टीका में अभी कह देता हूँ, जैसनाचार्य जी ने खुलासा किया कि जो उपयोग बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो, टिक गया तो टिक गया और केवल ज्ञान ले लिया, वो शुक्ल ध्यान, उसको ध्यान संज्ञा है। और जो मुनिराज के 6ठा 7वां चलता है, प्रमत्त अप्रमत्त प्रमत्त, वो लिखा हुआ पूरा इस पर जैसनाचार्य जी ने, उसको कहते हैं ध्यान संतति, एकाग्रता फिर विकल्प फिर निर्विकल्प, इस तरह का उनके योग वितरक्त से। पंचम गुण स्थान को कहा ध्यान चिंता, सामायिक आदि काल में कभी शुद्ध उपयोग हो जाता है, बाकी उसका चिंतन उसी तरह का चलता है। चौथे गुण स्थान वाले कुल का ध्यान अनुभव सूचन, कि जिसको एक बार हो गया अब उसको धगस तो रहती उधर की, लेकिन इतना प्रबल पुरुषार्थ नहीं होता, तो वैराग भावना, बारह भावना, आत्मचिंतन इस प्रकार का चलता है। तो ये जो है ना 294 गाथा ना, कोई प्रज्ञा छ नहीं, माने सीधी अपनी ज्ञान टार्च, अब मति श्रुति की उपाधि छोड़ दो, पूरी ज्ञान टार्च स्वभाव सन्मुख होती है और ज्ञान ज्ञायक का ही है, ये तो पहले कह चुके। तो इस प्रकार से वो उसमें एकदम ऐसा अपनापन त्रिकाली द्रव्य में आ जाता है कि उससे उपयोग फरटता नहीं है। 80 गाथा में जो कहा वो पूरी विधि बताई, पूछा जाए तो कि अगर तुमने सामने अनंत भगवान को द्रवगुण पर ध्यान लिया तो तुम भी तो वैसे ही हो, क्या अंतर है? मनुष्य वो मनुष्य तुम, और ये सब बता ही रहे हैं। और यहाँ तक न्याय में सिद्ध किया है कि श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आप मीमांसा में लिखा है और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडनबा जी ने उसको उद्धृत किया है, स्यादवाद केवल ज्ञान है वस्तु तत्व प्रकाश ने भेदा साक्षात असाक्षात ही वस्तु अंतम अवेद। जो श्रुत ज्ञान में परोक्ष रूप से और स्व संवेदन के प्रत्यक्ष रूप से दो चीज़ें हैं, कोई आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते हैं तो उस अपेक्षा कहेंगे परोक्ष के केवल ज्ञान की अपेक्षा, लेकिन स्व संवेदन प्रत्यक्ष है वो, तो वो उसका जो अनुभव है ज्ञान और केवल ज्ञान को, जो उसमें कोई अंतर नहीं है, यहाँ परोक्ष वहाँ प्रत्यक्ष, ऐसा सिद्ध किया है। 80 गाथा से भी वो बात निकलती है, जैसा नचर्द उसका खुलासा किया है। और एक ये तो बस एक प्रश्न है जो जरा बड़ा है, लेकिन हम संक्षेप में एक कह देते हैं। सत असत तत् तथा तत् तत् परचैन परमेनु कपावत, इनमें बच्चे बच्चे लिखा है अपने गुजरात में बच्चे दूं तथा सत असत, तो जो छह द्रव्य हैं सब अपने स्वरूप चतुष्टय में हैं।
आपने दोपहर को बताया नहीं सतरूप चित्रूप तत्व,
वो ख्याल में आ गया तभी तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो बोलता तो समझ गया।
और दूसरा ये कि जो परिशिष्ट में आचार्य देव ने जो
लिखा है सत असत तत् तत् आदि बोल के, वो ख्याल में लेके
सत और तत् का क्या डिफरेंस
बताते हैं? समय सार कलश टीका जो है 248 कलश में इसका अच्छा खुलासा किया है। देखो स्थूल रूप से तो तत् तत् माने क्या, ज्ञान अपने से तत् है और ज्ञों से अतत है, ज्ञाकारों से भी अतत है, वो तो ज्ञान रूप है, ये वहाँ घटक है। सत असत में द्रवचित काल भाव से स्वरूप से सत माने द्रवचित काल स्वचतुष्ट से सत और पर चतुष्ट से असत, बस इतना पकड़ना, अभी लंबा तो बहुत हो जाएगा।
तत्व
और तो वो भी ले रहे
भाव से सत असत अभी बोले।
हाँ
तत्व तत्व नहीं आ जाता है
क्या? भाव से,
भाव से सत और असत के स्वरूप से सत्य।
हाँ,
पर रूप से असत,
यही बात है, वही कहने जा।
हाँ, तत्व में वही नहीं आता है
क्या? नहीं आता, थोड़ा फर्क है।
ज्ञान से तत्व
स्थूल दृष्टि से देखो तो लगता है ऐसा है, अपने से सत है पर से असत है, कोई दिक्कत नहीं सुनना, लेकिन जब उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो जैसे व्यापक व्यापक संबंध किस में होता है, 49 कलश से समय सर तत्स्वरूप में होता है, माने पर्याय पर्यावान से व्यापक से अटैच रहती उसमें होती, लेकिन पर से नहीं होती, ख्याल में वो अपेक्षा हुआ तत्त तत् की कहाँ क्या शब्द की व्यवस्था है वो देखना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, मुख्य रूप से आचार्य ने जो परिशिष्ट में घटाया जहाँ से आपका प्रश्न है वहाँ पर स्पष्ट लिखा है, हमने ज्ञान से अपन कहते हैं ना ज्ञेय को जाना, तो वो ज्ञान किससे तत् है? ज्ञायक से ही तत् है, वो ज्ञेय से तत् नहीं, तत्पन है उससे अतत है और अपने से तत्व, वो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव इतना बढ़िया सिद्ध कर रहे हैं आप, बहुत मजा आया अपने शैलित मानो गुरुदेव ने किया, हम आप क्या अपनी पकड़ में आ जाए। बस इसलिए हो गया, बस इतना सदस्य द्रव्य।
पांच सात प्रश्न और है मेरे पास में, वो आप प्रश्न बोलिए मैं जवाब देता हूँ फटाफट।
एक एक प्रश्न इनके मैं पढ़ देता हूँ इनकी तरफ से।
हाँ थोड़ा फास्ट पढ़ना।
मुनि दशानु पहला सातवें गुण स्थान आवे पछी छठ्ठो गुण स्थान में आववानु थई जाय छे अने सातवें गुण स्थान आवे त्यारे बाह्यमां द्रव मुनि लिंग लिंगनू ज होय छे। आ रीते कोई पण व्यक्ति दीक्षा ले त्यारे तेने नियम थी पहलू चौथु अथवा पांचवू गुण स्थान
कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेगा तो दीक्षा लेते समय उसके नियम से चौथा और पांचवा गुण स्थान होगा, लेकिन अंदर में तैयारी इतनी हो जाती है कि कपड़े खोलने के बाद जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं नग्न दिगंबर अवस्था में तो फिर सातवां गुण स्थान आता है, कपड़े पहने पहने सातवां गुण स्थान नहीं होता।
इंद्रभूति जब समय में आते हैं
हाँ हाँ हाँ
देखते
हैं। हाँ तो चौथा ही हुआ था उनके
गुण स्थान चौथे पांचवे तक शायद आता
होगा। हाँ बिल्कुल
ठीक है, मनोबल ज्ञान होता है
कपड़े उतरने के बाद, कपड़े उतरने
में मुनि दशा में वो तो
इंद्रभूति को कपड़े उतरने के बाद।
और जो अभी बात चली थी
और एक श्रीमद् जी का एक पद
हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखिए मैं इन्हीं को पढ़ दूँ जितने हैं फिर आपके जो प्रश्न हो ना वो खड़े होके अपन कर लेंगे क्योंकि सब लोग बैठे हैं। हाँ लो आगे बढ़ो, दूसरा प्रश्न क्या है?
वो जो आपने कहा ना सवस्त्र को नहीं होता तो द्रवलिंग पहले वाला भी हो ज्ञान सच्चा हो गया अनुभव ना और वो अंदर में लीन हो जाए तो साथ में ले सकता है, ये भी ध्यान रखना।
आप इसमें कर लेना
ये
ये ये अच्छा
दोनों अच्छा
अच्छा। जो प्रश्न है ना वो आप प्रश्न पूछना, प्रश्न पे प्रश्न मत करना है ना। हाँ जो प्रश्न पे प्रश्न हो तो फिर उठ के अपन चर्चा कर ले। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ
उसके ही बाइट
बोलिए।
देखो आगे अपूर्व दशा हो
हिंदी में बोलेंगे क्या?
नहीं ये तो श्रीमद् जी का जो पद है मैं
बोलूँगा।
आगे अपूर्व दशा तसे अप्रमत योग रे केवल लगभग भूमिका स्पर्शी ने देह वियोग रे। तो गुजराती में उनका ऐसा हिंदी में बताता हूँ कि वो बोलते हैं कि ऐसी अपूर्व दशा आई तब तो गुजराती
आपको बोलिए
एवी अपूर्व दशा आई के अप्रमत योग थाय अने लगभग केवल ज्ञानी नजीक की दशा है ये दशा देह के वियोग के पहला तो वो मुझे समझ नहीं आता है कि ये सातवां तो नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने तो निर्गुण दशा ही निर्वसन दशा तो नहीं थी।
हाँ
तो ये उसका
भावना की अपेक्षा से बात
है।
हाँ भावना की अपेक्षा से बात। हाँ
सातवीं नरक के लिए
पद्म विषम नारद सेनन चाहिए।
अच्छा तो अभी तो है नहीं।
हाँ अभी वज्र ऋषभ नारद सेनन नहीं है,
नहीं है।
इसलिए अभी सातवां नरक नहीं हो सकता।
84,000 वर्ष तक भरत और अयाल क्षेत्र में से
कोई भी नरक में नहीं जाएगा, सातवें नरक में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
हिटलर वगैरह भी कोई
बिल्कुल हिटलर भी नहीं जाएगा,
ओसामा बिन लादेन भी नहीं जाएगा।
हाँ लादेन भी नहीं जाएगा बिल्कुल। हाँ नहीं जाएगा। आपने खुद से कहा तकलीफ हो रही है जाना चाहिए क्या? नहीं जाएगा
नहीं नहीं ठीक फर्स्ट कर
पंचासी कहने का था ये गति नाम ने आयुष ज्या पूर्ववदन क्षय थाय छे त्या अन्य गति आयुष्य पामे जीव निर्लेश आवशे। तो ऐसा है हिंदी में कि जब ही अभी का गति और आयुष्य
खत्म
होता है तो जीव आगामी काल का बनता है। तो गति और आयुष्य साथ में बनता है।
देखिए ऐसा है गति नाम कर्म का भेद है और वो नाम कर्म का भेद जीवन पर्यंत बंधता रहता है। आयु है वो आयु कर्म जीवन में सिर्फ एक अंतर मुहूर्त के लिए बंधती है, उदय निरंतर चलता है, ठीक है। जब गति निरंतर बंधती जा रही है तो कभी मनुष्य कभी त्रियंश कभी देवनार की इस तरह की गतियां बंधती रहती है परिणामों के अनुसार। अब जीवन के जिस अंतर मुहूर्त में आयु कर्म बंध गया, जब भी आयु कर्म बंध गया तो फिर जो गति बंधेगी वो आयु अनुसार ही बंधेगी। और पहले की जैसे मान लो अभी मनुष्य आयु बांध ली हमने या देव आयु बांध ली, तो किसी ने पहले नरक त्रियंश गति बांधी हुई गति बांधी होगी उसका क्या होगा, तो कहा स्थिभुक संक्रमण हो जाता है उसका। स्थिभुक संक्रमण शब्द का प्रयोग किया है माने वो उदय में नहीं आएगी, वो पूरी तरह से संक्रमित होकर के बदल करके उदय में आएगी, ऐसा है।
चार अभाव है।
हाँ चार अभाव है
तो अन्योन्य अभाव
सिर्फ पुद्गल में ही घटित होता है।
नहीं, पुद्गल में ही घटित होता है।
हाँ
लेकिन जब अत्यंत अभाव बोलते हैं
हाँ
तो उसमें अन्योन्य आ जाता है।
नहीं नहीं आता है, फर्क है उसमें।
हाँ
अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव में क्या फर्क है? अत्यंत अभाव द्रव्यों में घटित होता है और जो अन्योन्य अभाव है ये अन्योन्य अभाव पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव घटित होता है। अब आप कहेंगे अत्यंत यही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दो द्रव्य परस्पर में मिलकर के एक नहीं होते, इसलिए उनकी पर्यायें एक दूसरे रूप नहीं हुए, ऐसा कहने का कुछ वो नहीं है। वो अत्यंत अभाव में चला गया। पुद्गल के परमाणुओं की अवस्थाएं बदलती है, पुद्गल के परमाणु स्कंद रूप हो जाते हैं, तो कहा स्कंद रूप होने पर एक पुद्गल परमाणु की वर्तमान अवस्था दूसरे पुद्गल की वर्तमान अवस्था में अभाव है, साथ में होते हुए भी एक मेक दिखने पर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का मिलकर के स्कंद हो जाने पर भी वे स्वतंत्र हैं, ये सिद्ध करने के लिए अन्योन्य भाव का है। वो मूल द्रव्यों के अभाव की बात कही है वहाँ, वो पुद्गल द्रव्य के एक पुद्गल के और वर्तमान पर्याय की बात कही है। चार अभाव के ऊपर 6-8 प्रवचन हैं, कल मैंने लिंग की बात कही थी उसमें देखना आप, तो उसमें अन्योन्य अभाव को बहुत स्पष्ट किया है।
और
समय नजदीक ले
लो। हाँ और बोलो।
सौधर्म इंद्र एक अवतारी है।
हाँ एक भाव अवतारी
है। सौधर्म इंद्र ओनली एक अवतारी है कि सब इंद्र?
सब इंद्र नहीं, सिर्फ दक्षिण इंद्र, सौधर्म साइड वाले, सौधर्म दक्षिण साइड वाला इंद्र है, ईशान नहीं है, लेकिन सनत कुमार है, सनत कुमार एक भावावतारी है। तो सौधर्म साइड वाले जितने भी इंद्र हैं वो सब एक भावावतारी है। सौधर्म इंद्राणी, इंद्र की जो इंद्राणी है शची, वो एक भावावतारी है। सौधर्म इंद्रादि के जो चार लोकपाल हैं वो भी एक भावावतारी है, कुबेर यम वरुण सोम ये सब एक भावावतारी है। पांचवें ब्रह्म स्वर्ग में जो लोकांतिक हैं अंत में रहने वाले वो एक भावावतारी हैं और सर्वार्थ सिद्धि वाले। अनुत्तर नहीं, अनुत्तरों में सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि वाले। हाँ अनुत्तर वाले जाएंगे लेकिन एक भावावतारी नहीं है।
अच्छा सची इंद्राणी एक अवतारी है।
हाँ
अभी सौधर्म का आयुष्य 2 सागर है।
हाँ
इंद्राणी का आयुष्य
5 पल्ले, 55 पल्ले नहीं 5 पल्ले है, 5 पल्ले 55 जो है ना वो 16वें स्वर्ग की इंद्राणी का है 55 पल्ले। सौधर्म इंद्र की जो इंद्राणी होती है उसका 5 पल्ले है।
2 सागर के आयु में
5 पल्ले से देखे तो 40 नील हो जाती है, 40 नील हो जाएगी, 40 नील
कई लाख करोड़ जो आप समझ रहे हैं।
हाँ उतना ही,
सब
एक अवतारी होगी, सब एक अवतारी होगी 100%। इतनी इंद्राणियों का मोक्ष कल्याण बनाने के लिए सौधर्म इंद्र आता है। हाँ अपनी एक्स वाइफ का क्या कहोगे?
मुझे ऐसा लगा
हाँ
सौधर्म इंद्र बनना तो मुश्किल है।
हाँ
यो तो समझी से देव समझी देव।
हाँ 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 तो इंद्राणी बनने का चांस ज्यादा है।
इंद्राणी बनना तो थोड़ा इजी है क्योंकि इंद्राणी मिथ्या दृष्टि हो तो ही इंद्राणी बन सकती है।
बराबर है,
बहुत इजी है
क्योंकि संकीति के तो श्री होती नहीं।
अब जवाब सुन लें फिर आपका दूसरा प्रश्न सुन लेंगे। मैं समझ गया, समझाता हूँ आपको। समय क्योंकि सबको जाना है, सब इसलिए बैठे हैं कि ये तीन विद्वान बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा इतनी सी इज्जत है कि वो okay. बात ऐसा है कि इंद्राणी बनना आसान है, किसकी अपेक्षा से? सौधर्म इंद्र की तुलना में इंद्राणी बनना आसान है, लेकिन अनंतानंत जीवों की तुलना में इंद्राणी बनना भी महाकठिन काम है। हो गए सब?
उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शक्तिवार।
कल सुबह 7:45 को पूजा और फ्री ग्राउंड के बाद